Kalpa Radio Exclusive Interviews। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रसिद्ध पर्यावरणविद व सामाजिक कार्यकर्ता श्री आलोक शुक्ला से हसदेव आंदोलन के संबंध में सुमेधा अग्रश्री से हुई विस्तार से बातचीत।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
मित्रों, आज हमारे साथ हैं पर्यावरणविद सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला जी और हम उनसे एक लंबी बातचीत करेंगे हसदेव को लेकर। जो भी हमारी क्यूरियोसिटी है, जो भी हमारी आशंकाएं हैं, हम थोड़ा सा निवारण करने की कोशिश करते हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जी, बहुत शुक्रिया सुमित।
पहले तो मैं यही कहूंगी कि हमारे जो श्रोतागण जुड़े हुए हैं वो बहुत ग्रामीण इलाकों के हैं, तो उनके साथ बहुत टेक्निकली चीजें, बहुत सारी टेक्निकली चीजें समझ नहीं पाते हैं। बहुत सामान्य शब्दों में आप उनको बताइए कि ये हसदेव नदी, हम सब उसके विषय में जानते हैं, ये हसदेव आंदोलन क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी?
बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। जी, निश्चित तौर पे देखिए, हसदेव आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है चर्चा का, ना सिर्फ स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और हसदेव को लेकर उतने ही सवाल भी हैं लोगों के मन में, उसको जानने के, उस संघर्ष को समझने के लिए। देखिए, हम बार बार जब ये कहते हैं कि हसदेव का आंदोलन पिछले एक दशक से चल रहा है, हसदेव के जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, आजीविका को बचाने की लड़ाई वहाँ के अपने आदिवासी और ग्राम सभाओं के द्वारा, जिसको बचाने की बात हो रही, वो हसदेव क्या है उस पर हम थोड़ा सा बात कर लें। कि देखिए, हसदेव अरण्य जो है, जैसे नाम से ही है कि हसदेव का जंगल, और हसदेव नदी जो छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है, उसका जलग्रहण पूरा क्षेत्र, जिन जंगलों से, पहाड़ों से, जमीन से पानी बरस के हसदेव नदी में पहुंचता है, वो पूरा इलाका जो है हसदेव अरण्य के रूप में एक हम जानते हैं। करीब 1700 वर्ग किलोमीटर का यह एक वन इलाका है, और इसका नाम बेसिकली कोल के कारण पड़ा है, क्योंकि इस जमीन के नीचे कोयला है, और इसीलिए उसको हसदेव अरण्य कोल फील्ड के रूप में आइडेंटिफाई, क्योंकि हसदेव का जलग्रहण क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस इलाके को जिसमें कोयला है उस क्षेत्र को कोल फील्ड के रूप में जाना गया है कि हसदेव अरण्य कोल फील्ड। और ये 1700 वर्ग किलोमीटर का जंगल है उस पूरे वन इलाके का एक है, और ये सूरजपुर, सरगुजा और कोलबा जिले की सीमाओं में स्थित है, जो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि ये माना गया है कि ये मध्य भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक वन क्षेत्र है, जो कि अभी तक अनफ्रेगमेंटेड है, मतलब एक विभाजित नहीं है, एक पूरा लैंडस्केप है ये। और इस जंगल की जो समृद्धता है, मतलब इस जंगल को यदि हम देखें तो जो हमारे मध्य प्रदेश के कान्हा के जो जंगल हैं, झारखंड के पलामू के जो जंगल हैं, इन जंगलों को आज भी जोड़ने का ये कार्य करता है कॉरिडोर के रूप में। तो इस जंगल की जो खासियत ये है, जो विविधता यहाँ की बहुत समृद्ध है, मतलब कई महत्वपूर्ण लुप्त प्रजाय वनस्पतियां मौजूद हैं। इसमें करीब 21 तरीके के वन्य प्राणी हैं, जिसमें हाथी भी है, बाघ भी यहाँ पे पाया गया है, और कई विलुप्त प्रजाति के जो है वो वन्य प्राणी यहाँ पे मौजूद हैं। इस पूरे जंगल से हम देखते हैं कि जो पानी आता है हसदेव नदी में, और हसदेव नदी पर एक बांगो बांध बना है, मिनी माता बांगो बांध, जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद के नाम पे बना है, और उस बांगो बांध से जांजगीर, कोलबा, बिलासपुर के लगभग 5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। और बहुत साफ तौर पे ये कहा गया है उस बांगो बांध के अपने दस्तावेजों में कि यदि बांगो बांध के जलग्रहण क्षेत्र के यदि जंगलों को काट देंगे तो बांध की जल भराव क्षमता पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा, वो कम होगा सिल्टेशन के कारण। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हसदेव के जंगल की बचाने की बात पहला, कि हमें हसदेव नदी बचाना है, हमें मिनी माता बांगो बांध बचाना है, तो उस इलाके के जंगल नहीं कटने चाहिए, क्योंकि वो कटेंगे।
ये जो आंदोलन है आपने कहा कि पिछले एक दशक से चल रहा है, क्यों शुरुआत करनी पड़ी इस तरह के आंदोलन की? क्योंकि कोल ब्लॉक तो पहले भी आवंटित होते रहे हैं, हालांकि अलग अलग एरिया में होते रहे, लेकिन कोल ब्लॉक तो पहले भी चलते रहे, और बहुत सामान्य तौर पर जो सामान्य व्यक्ति है वो तो यही सोचेगा कि अरे कोयले बिना तो चलना ही नहीं है बहुत कुछ, तो इस हसदेव को लेकर ही इतने सवालात क्यों खड़े हो रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ कोल ब्लॉक्स और भी बहुत सारे हैं।
बिल्कुल जी, महत्वपूर्ण, क्योंकि जो मैं कह रहा था कि हसदेव पर्यावरणीय बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और इसका बचना पूरे छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसून को भी नियंत्रित करता है। एक अब सवाल यह है कि हसदेव में कोल ब्लॉक का, देखिए हसदेव के अंदर जो कोयला है वो छत्तीसगढ़ में करीब 58,000 मिलियन टन कोयला, उसका सिर्फ 10% से भी कम कोयला हसदेव में है, 5,000 मिलियन टन। पूरे देश का कोयला जो है उसका सिर्फ 2% कोयला है, मतलब कि 98% कोयला हसदेव से बाहर है। और वहां पे ऐसी जगह पे भी कोयला है जहां जंगल नहीं है, जहां पे पर्यावरणीय संवेदनशील इलाके नहीं है। एक अब हसदेव में आंदोलन क्यों है, उसका साफ कारण ये है कि हसदेव में रहने वाले जो लोग हैं वहां के आदिवासियों की अपनी 60% आजीविका जो है इनकम वो जंगलों पर निर्भर है। उनकी अपनी रीति रिवाज संस्कृति अस्तित्व एक तरीके से जंगल है, तो वहां के स्थानीय आदिवासी पीढ़ियों से उस जंगल पर जो निर्भर है उस जंगल को बचाने के आंदोलनरत है, और यह अधिकार उनको इस देश का संविधान देता है। क्यों? क्योंकि यह संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है, और 5वीं अनुसूची के लिए जो बने कानून है, चाहे वो पैसा कानून हो, वन अधिकार कानून हो, वो ये कहते हैं कि बिना ग्राम सभा की इजाजत से आप उनके जंगल जमीन नहीं ले सकते। तो संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत अपने जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्ष वहां के लोग कर रहे हैं। अब इस संघर्ष में बाकी लोग क्यों जुड़े हुए हैं, वो साफ कारण ये है कि हसदेव का जंगल से पानी जो है वो बिलासपुर में भी आ रहा है, अंबिकापुर में भी आ रहा है, कोलबा में भी आ रहा है, रायगढ़, ये सारे इलाके प्रभावित होंगे और जंगल कट गया तो। जलवायु परिवर्तन का दौर जब धरती पर जीवन का संकट हो गया है, हम सब उससे प्रभावित हैं, इसलिए पूरा देश चिंता कर रहा है कि हसदेव जैसे प्राकृतिक जंगल कट जाएंगे तो जलवायु परिवर्तन का संकट और बढ़ेगा, मानसून डिस्टर्ब होगा तो पूरे देश पे संकट पड़ेगा, और हम सबकी प्राणवायु वो जंगल में है। तो हसदेव के जो लोग हैं, जिनकी ये संवैधानिक लड़ाई है, जिनके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, जिनके जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है, उस लड़ाई के साथ हम तमाम लोग जुड़े हैं, क्योंकि हमारा जीवन इन जंगलों से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है ये, और इसीलिए ये संघर्ष आप देखेंगे कि व्यापक चल रहा है। अब सवाल ये है कि हसदेव क्यों नहीं खोदना चाहिए, क्यों माइनिंग नहीं होनी चाहिए? हसदेव में माइनिंग इसीलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हसदेव का जो 1700 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, वर्ष 2010 में केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने इसको कहा था नो गो इलाका। एक नो गो का मतलब ये संज्ञा दी थी कि कोयला जिन इलाके हैं उनका एक अध्ययन हुआ था कि कहाँ हमें खनन करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। खनन नहीं करना चाहिए उसके यही पैरामीटर थे कि वनों की घनत्वता कैसी है, जैव विविधता कैसी है, वहां से निकलने वाले जल स्रोत कैसे हैं, वहां वन्य प्राणियों का रहवास कैसा है, और सबसे महत्वपूर्ण वहां के लोगों की उस जंगल पर क्या निर्भरता है। इन पैरामीटर के आधार पर आप देखेंगे कि हसदेव पूरा का पूरा 1700 वर्ग किलोमीटर नो गो इलाका डिक्लेयर हुआ था कि यहाँ खनन की इजाजत देने ही नहीं चाहिए, और ये सरकारी दस्तावेज था।
तो जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से केंद्र सरकार ने भी दस्तावेजों में ये लिख दिया था कि इस इलाके में खनन नहीं होना चाहिए, और
बिल्कुल
जितनी मेरी जानकारी है, मेरे विचार से उस समय राज्य सरकार ने भी इस पर सहमति जताई थी कि इस पर नहीं खनन किया जाना चाहिए।
देखिए राज्य सरकार ने उस तत्कालीन समय से आज तक ये स्वीकार किया है कि हसदेव में खनन नहीं होना चाहिए। दो तीन उदाहरण आपके सामने लगता हूँ। अभी भी हसदेव का जब पलसई केतेवासन कोयला खदान चालू हुई थी 2012 में, सिर्फ एक खदान को स्वीकृति दी गई थी, तब उसकी स्वीकृति में लिखा था कि हसदेव में अन्य किसी खदान का कोई प्रस्ताव ही नहीं आना चाहिए। मतलब एक दे दिया है, अब कोई खदान हसदेव में नहीं खुलेगी। एक दूसरा, इसी हसदेव को बचाने के लिए वर्तमान सरकार ने एक संकल्प किया था कि इस पूरे इलाके को हम बचाएंगे और रेमलू हाथी रिजर्व बनाएंगे, और 3800 वर्ग किलोमीटर का रेमलू हाथी रिजर्व बनाया, जिसमें पलसई केते खदान को छोड़ के बाकी पूरे जंगल को शामिल किया, और वहां की ग्राम सभाओं से सहमति भी ले ली। सिर्फ कॉर्पोरेट के दबाव में सरकार इस निर्णय से थोड़ा सा पीछे हटी और 3800 के क्षेत्रफल को कम करके 1900 किया, और जो सरगुजा के साले कोल ब्लॉक है उनको बहाल कर दिया। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि वर्तमान 2021 में भी राज्य सरकार ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय को एक पत्र लिखा था इसी कोल ब्लॉक के लिए कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया रोक दी जाए। तो आज भी राज्य सरकार के जो पत्र हैं उनमें तमाम ये बातें लिखी हुई हैं कि हसदेव में खनन से नदी का जलग्रहण क्षेत्र खत्म होगा, मानव हाथी संघर्ष बढ़ेगा, पर्यावरण पर गंभीर दुष्प्रभाव होगा, इसलिए खनन नहीं होनी चाहिए। और आपको याद होगा, मैं दर्शकों को बताऊं कि जब 2020 में कमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक की नीलामी हो रही थी तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी हसदेव में 5 कोल ब्लॉक की कमर्शियल नीलामी का विरोध किया और उनको सूची से बाहर निकलवाया कि यहाँ खनन नहीं होना चाहिए। तो 2010 से लेके 2020 तक लगातार केंद्र और राज्य सरकार ये स्वीकार्य करती रही है कि यहाँ खनन नहीं होना चाहिए। अंतिम में इसी बिंदु पर इस बात की, एक भारतीय वन्य जीव संस्थान है जो कि केंद्र सरकार का एक संस्थान है जो वन्य प्राणियों पर काम करता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हाल ही में पूरे हसदेव अरण्य का अध्ययन किया है और उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यदि हसदेव में खनन होगा तो मानव हाथी संघर्ष छत्तीसगढ़ में इतना विकराल हो जाएगा कि कभी हम संभाल नहीं पाएंगे और हसदेव के पूरे इलाके को खनन मुक्त करते हुए नोगो घोषित किया जाए। मानव हाथी संघर्ष की स्थिति ये है छत्तीसगढ़ के अंदर, पिछले 3 सालों में 200 लोग हाथी से कुचल के मारे गए हैं और 45 हाथी मारे गए हैं।
यहाँ एक बहुत सामान्य सी आशंका ये उठती है, सवाल ये उठता है आलोक जी, कि अगर केंद्र सरकार भी चाहती है और राज्य सरकार भी चाहती थी कि यहाँ पर कोई खनन ना हो तो फिर मुद्दा अटकता कहाँ है?
मुद्दा अटकता है क्योंकि यहाँ पे हसदेव में खनन का एक सबसे बड़ा लावालती एक कॉर्पोरेट समूह है।
अच्छा।
और राजस्थान जो सरकार है, देखिए कोल ब्लॉक राजस्थान को दिए गए हैं, पलसा ईस्ट केतेवासन और केते एक्सटेंशन, ये 4 कोल ब्लॉक है जिसमें से 1 में खनन हो रहा है, 3 में शुरू होना है। इन कोल ब्लॉक के खनन के जो अनुबंध है एक निजी कंपनी को अडानी को दिए गए हैं। दिक्कत यह है कि यहाँ राजस्थान के पास तो कोयले के विकल्प हैं, राजस्थान को छत्तीसगढ़ के हसदेव से कोयला जा रहा है, परिवहन का चार्ज इतना ज्यादा है कि उसको महंगा कोयला मिल रहा है। और इनके लिए आसान है कि मध्य प्रदेश के सोहागपुर कोल फील्ड से आपको कम दूरी में कोयला उपलब्ध है, लेकिन चूंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ से पूरा जितने भी राज्य सरकारों को कोल ब्लॉक मिले हैं उनके खनन अनुबंध हासिल किए हैं एक कॉर्पोरेट हाउस ने, और वो कॉर्पोरेट हाउस चाहता है कि यहीं से कोयला निकले, क्योंकि जो अनुबंध है राज्य सरकार और कॉर्पोरेट के उसके बीच में ऐसे अनुबंध किए गए हैं कि अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है उस कॉर्पोरेट को। और दुखद रूप से ये कहना पड़ेगा कि जो राजस्थान के नागरिक हैं वो अपने ही कोयला खन से महंगे दर पे कोयला खरीद रहे हैं एक निजी कंपनी से। तो दिक्कत ये है कि केंद्र और राज्य के बीच में कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट हाउस बैठा है जिसके हितों को ना केंद्र नजरअंदाज कर रहा है ना राज्य कर रहा है। और यदि वहां के आदिवासी, वहां उनका विरोध और पर्यावरण हितों की यदि ध्यान दिया जाए और कॉर्पोरेट हितों को पीछे लग दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार या कोई भी संस्थान ये कहेगा कि हसदेव में खनन हो। तो सिर्फ एक कारण जो है इसके पीछे है, हसदेव में माइनिंग को अनुमति देने के पीछे।
तो आलोक जी, वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी हैं वो तो अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, कुछ आपके जैसे कार्यकर्ता हैं उनके साथ लगे हुए हैं, बहुत जो सामान्य लोग हैं जिनकी जिंदगी यूं कहें कि इस चीज से डायरेक्टली अभी तो प्रभावित नहीं होती, वो दूर का नहीं सोचते, वो आज का सोच रहे हैं कि आज तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बहुत सामान्य से लोग हैं वो किस तरह इन चीजों से जुड़े, शामिल हों और अपनी भागीदारी कैसे निभाएं वो?
देखिए, मुझे लगता है कि आज के समय कोविड ने इस दुनिया को सिखा दिया है, ऑक्सीजन के लिए दम तोड़ते हुए लोगों को देखा है। गर्मी जिस तरीके से तापमान में वृद्धि दिख रही है, यदि ये वृद्धि और 2 डिग्री होगा तो क्या हम लोगों की जिंदगी आसान होगी इस धरती पे? पर प्रकृति ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि प्रकृति का और विनाश होगा तो जीवन खतरे पे होगा, और जो गांधी जी कहते हैं कि ये प्रकृति आपकी जरूरत को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि अब हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि यदि जीवन को बचाना है तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुनाफे या कॉर्पोरेट के लाभ के लिए चीजें जो हो रही हैं उन पर एक सवालों को खड़ा करना। कोयले को लेकर देखिए, ये सवाल कहना पड़ेगा कि बिजली यदि कोयला अंतिम विकल्प होता है इस देश के अंदर दुनिया के अंदर, तो माना जाता कि हाँ यार बिजली बंद नहीं हो सकती, वैकल्पिक ऊर्जा है बिजली प्राप्त करने के लिए, सोलर ऊर्जा से लेकर विंड एनर्जी, हमारी हवा से बिजली बनाने की तकनीक मौजूद है। राज्य सरकारों के ऊपर ये जवाबदेह बनाया जाए और उनको कहा जाए कि जो आपने वैकल्पिक ऊर्जा के लक्ष्य तय किए हैं उनको हासिल करिए और कोयले से पीछे हटिए, ये सवाल पूछना पड़ेगा एक। दूसरा ये कहना पड़ेगा कि इस देश के अंदर जब हसदेव जैसे इलाकों को छोड़ के कोयला मौजूद है तो हसदेव का विनाश आज क्यों? नोगो इलाके में ये कहा गया था ना कि 100 साल तक हम हसदेव को भी छोड़ दें तो कोयला है, तो 100 साल बाद उजाड़ लीजिए ना, 100 साल तो जिंदगी जीने दें लोगों को, आने वाली पीढ़ियां भी हैं इस धरती पर, तो ये भी आम लोगों को कहना पड़ेगा कि हसदेव में खनन नहीं। तो जो प्राकृतिक इलाके हैं जहां से हमारी नदियां निकल रही हैं, जहां पे हमारे वन्य प्राणी हैं, जहां पे हमारी ऑक्सीजन के केंद्र हैं, ऐसे जीवनदायिनी जंगल इलाके के वो विनाश के खिलाफ हर नागरिक को बोलना पड़ेगा। और वो इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि जो पूरी एक माहौल बनाया जाता है कि बिजली चाहिए तो हसदेव का जंगल कटेगा, तमाम आंकड़े तमाम दस्तावेज ये मौजूद हैं कि हसदेव को बिना उजाड़े इस देश की बिजली जो है 100 सालों तक आप पूरी ले सकते हैं कोयले के आधार पे, जबकि अभी 2030 में तो आपको कोयले आधारित बिजली को आधा करना है। खुद प्रधानमंत्री ने COP26 में ये कहा है कि 50% बिजली हमारी वैकल्पिक ऊर्जा से आएगी, तो फिर इन जंगलों को क्यों विनाश करना है, ये सवाल उठाना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण जो कैसे सकते हैं, हम तो बार बार ये कह रहे हैं, तमाम नागरिकों से हमारी अपील है कि हसदेव नहीं, ऐसे तमाम पर्यावरणीय इलाके, क्योंकि यदि किसी धरती में खनिज है तो क्या हम सारे खनिजों को निकालेंगे? कहीं ना कहीं एक सीमा तय करनी पड़ेगी कि हम इससे ज्यादा नहीं निकालेंगे और इन इन इलाकों से नहीं निकालेंगे, वो सीमा तय करवाना कहीं ना कहीं सरकारों के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, एक राजनीतिक सवाल खड़ा करना पड़ेगा, हर नागरिकों को सवाल के साथ जुड़ना पड़ेगा। और हसदेव की लड़ाई सिर्फ हसदेव के नागरिकों की नहीं है, हम सब की लड़ाई है, उस लड़ाई में हम सब लोग जुड़े। हालांकि ये हुआ भी है, पिछले 22 सालों में ये पहली बार हुआ है कि छत्तीसगढ़ का कोई मुद्दा स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का मुद्दा बना है और हर नागरिक ने कहा है कि हसदेव बचना चाहिए। इसका समर्थन देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, इसको और व्यापक करने की जरूरत है और सरकारों से बहुत साफ कहना चाहिए कि अब हसदेव में खनन नहीं होगा, हसदेव को छोड़ के कोयले के विकल्पों को आपको देखना होगा और अपने इलाकों में रह के हसदेव की बात लोग करें, मीटिंग करें, अपने अपने जगह रह के लोग विरोध प्रदर्शन करें, जो भी गतिविधि। आप देखिए छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी कलाकार किस तरीके से हसदेव के मूवमेंट पे सामने आए हैं, किसी ने नहीं कहा, किसी ने जानकारी नहीं दी, लेकिन 10 से 15 हसदेव को बचाने के लिए गाने बन गए हैं, 12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बन गई है। तो हर कलाकार, हर व्यक्ति जो संवेदनशील है, जिसको पर्यावरण की चिंता है, उसको कहीं ना कहीं हसदेव को बचाने की इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
एक अच्छी बातचीत हुई आलोक जी, और बहुत जो ग्रामीण इलाके के लोग भी हैं जो इस विषय में टेक्निकली बहुत ज्यादा नहीं भी जानते हैं, लेकिन इतना तो जानते ही हैं कि हसदेव बचाने की एक मुहिम चल रही है, तो हो सकता है शायद इस बातचीत को सुनकर वो भी थोड़े से इंस्पायर हों और अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं जहां हैं वहीं से करें, भले एक व्हाट्सएप मैसेज ही क्यों ना डालें या अपना डीपी में ही क्यों ना लगाएं, छोटी सी ही एक पहल करें, पर उम्मीद है कि ऐसे करते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस विषय पर हम अर्पा रेडियो में लगातार कुछ ना कुछ बातें किसी न किसी से ये बातें करते रहें। आलोक जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, आप सुन रहे थे पर्यावरणविद श्री आलोक शुक्ला से हसदेव आंदोलन के संदर्भ में हुई सुमेधा अग्रश्री से बातचीत।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।